शिरीष के फूल पृष्ठ संख्या 98 हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लग गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरग्वध अमलतास की बात में भूल रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ औरग्वध की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिनों के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था, वह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ भया साथ पलाश, ऐसे दमदारों से तो लंडूरे भले। फूल है शिरीष, वसंत के आगमन से लहक उठता है, अषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, मन रम गया तो हरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं, शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों की को अपनी वृक्ष वाटिका की चहार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। वृहत संहिता 5513 अशोक आरष्टि पुन्नाग और शिरीष के छायादार और वनमृषण हरितिमा से परिवेष्टित वाटिका वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका की सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला अर्थात प्रेंखा दोला लगाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि वकुल के पेड़ ऐसी दलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या पूरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर इसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यह तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिन नरपातियों की बात नहीं कर रहा हूं, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा लें। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी, उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए हैं, शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता था, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पन पुनः पत्र त्रिराम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत नहीं होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कर रहा था। शिरीष के पुष्पों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। पृष्ठ संख्या 99, यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प मात्र से मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किस प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मार कर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत की अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी, धरा को प्रणाम यहीं तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुनाता। मैं शिरीष के फलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है, महाकाल देवता समासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनके प्राण कड़ा थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। तुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आँख बचा जाए। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुख किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। अमे की मरे, एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शीर्ष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। न उधव का लेना, न माधव का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं। कबीर बहुत कुछ शीर्ष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरल और मादक। कालिदास भी जरूर अनाशक्त योगी रहे होंगे। शीर्ष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनाशक्त अनाबिल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनाशक्त नहीं रह सका, जो पक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्णाट राज को प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थी, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को, तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करता करे तो मैं कर्णाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेसाम मूर्धन्य ददामी वाम चरणम कर्णाट राज प्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंभ से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। मैं कहता हूँ कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। शीर्ष की मस्ती को की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी से की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनाशक्त योगी की स्थिर प्रज्ञात और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। इसीलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने हृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कवयह कवयह कवस्ते कालिदासाद्या, मैंने तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ कहा था, वयम अपि होकर कालिदास ने एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शीर्ष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकलता है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का चित्र बनाया था, लेकिन रह रह कर उनका मन खींच उठता था। उहूं कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शीर्ष पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंडस्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कृतम न कर्ण पीर्तबंधनम सखे शीर्ष मागंड विलोकेसरम यन शरचंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्र रचितम स्नानांतरे। कालिदास ने यह श्लोक न लिख दिया होता तो मैं समझता कि वे भी बस और कवियों की भांति कवि थे। सौंदर्य पर मुग्ध, दुख से अभिभूत, सुख से गदगद। पर कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इच्छुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनाशक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनाशक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अल्प शक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राज्योद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया, असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यह बताना उसका वह कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। शिरीष तरु समुच सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रह सकता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन धूप वर्षा आंधी लू अपने आप में सत्य नहीं? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट अग्निदाह लूटपाट खून खच्चर का बाउंडर बह गया है, उसके भीतर से क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सकता है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता था, क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सकता था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है।